सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 18वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की कथा। एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने दृष्टद्युम्न के द्वारा की गई घोषणा के बारे में जाना। स्वयंवर के लिए सभी वीरों ने द्रौपदी को जीतने का हर प्रयास किया, लेकिन वे सभी असफल रहे। अंत में अर्जुन ने अपने पराक्रम से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वयंवर को जीत लिया, लेकिन अब सभी राजा अपनी हार को अपमान मानकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए एकजुट हो गए हैं। अपने भाई का साथ देने के लिए भीम ने एक वृक्ष को उखाड़ लिया और अर्जुन स्वयंवर का धनुष लेकर सबसे युद्ध करने के लिए सज्ज हो गए हैं। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हुए अंगराज कर्ण को तीक्ष्ण बाण मारे। बाणों के प्रहार से कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। दोनों ही दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से क्रोध में लड़ने लगे। उस समय अर्जुन के द्वारा चलाए गए सभी बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। सभी राजा उसके इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, विप्रवर, आपके युद्ध कौशल से मैं संतुष्ट हुआ। आप कौन हैं? क्या आप धनुर्वेद के ज्ञाता हैं? या स्वयं भगवान परशुराम हैं? या आप भगवान विष्णु हैं? मैं मानता हूँ कि आप इन्हीं में से कोई एक हैं। अपने असली स्वरूप को छुपाने के लिए ही आपने यह ब्राह्मण वेश धारण किया है। अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, कर्ण, ना तो मैं भगवान परशुराम हूँ और ना धनुर्वेद का ज्ञाता। मैं समस्त युद्ध कलाओं में और शस्त्र कलाओं में निपुण ब्राह्मण हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर कर्ण ब्राह्मण तेज को अजय मानकर युद्ध छोड़कर हट गया। वहीं दूरी पर भीम और शल्य के बीच भी युद्ध छिड़ गया था। वे एक दूसरे को ललकारते हुए एक दूसरे से भिड़ गए थे। उनके मुक्कों की आवाज सभी को सुनाई पड़ रही थी। तभी भीम ने दोनों हाथों से शल्य को उठाकर युद्ध भूमि पर पटक दिया। शल्य की हार और कर्ण को भी हार माना हुआ देखकर सभी उन्हें चारों ओर से घेर कर कहने लगे, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनकी जन्म भूमि कहाँ है? यह सब देखकर श्री कृष्ण ने कहा, इन ब्राह्मण देव ने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी योद्धा शांत हो गए। रंग मंडप में उपस्थित सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। लोगों की भीड़ से आगे निकलते हुए वे द्रौपदी के साथ वापस अपने डेरे की ओर चलने लगे। वहीं माता कुंती पुत्रों को भिक्षा के लिए गया हुआ जानकर चिंता में डूब गई और सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान तो नहीं लिया, कहीं उन्होंने उनकी हत्या तो नहीं कर दी, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई है? उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही द्रौपदी की प्राप्ति को सूचित करते हुए उन्होंने कहा, माँ, हम लोग भिक्षा ले आए हैं। उस समय माता कुंती कुटिया के अंदर थी। उन्होंने पुत्रों को देखे बिना ही कहा, तुम सभी मिलकर भिक्षा बांट लो। लेकिन तभी द्रौपदी को वहां उपस्थित देख उन्हें आभास हुआ कि उनसे क्या पाप हो गया है। चिंता में डूबी हुई माता कुंती ने कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती अधर्म सोचकर चिंता में डूब गई। कुंती ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहा, बेटा, यह राजा द्रुपद की कन्या है। अर्जुन ने मुझे इसे भिक्षा कहकर समर्पित किया और मैंने बिना देखे भिक्षा को सब में बांट लेने के लिए कहा। बताओ पुत्र, अब हमें क्या करना चाहिए है? कैसे मेरी बात झूठी ना हो और ना द्रौपदी को ही कोई लालचन लगे। राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की बात पर दो घड़ी विचार किया और फिर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे ही साथ राजकुमारी की शोभा है। अर्जुन, अग्निदेव का आवाहन करो और कन्या को स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, नहीं भैया, आपके विवाह से पहले मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? पहले आपका विवाह होगा, फिर भैया भीम का और फिर मेरा। मैं आपसे पहले विवाह नहीं कर सकता हूँ। आप ही अपनी बुद्धि के अनुसार हमें धर्म और यश के अनुकूल रास्ता दिखाइए। सभी पांडवों ने वहां उपस्थित पांचाली को भी देखा। उसका स्वरूप सौंदर्य देखकर सभी पांडव कामदेव से आसक्त हो गए। तभी युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी की बातों का स्मरण किया। भगवान वेद व्यास ने पांडवों से कहा था कि द्रौपदी उन पांचों पांडवों की पत्नी होगी। यह बात सुनते ही सभी कुमार शांत होकर चिंतन करने लगे। उसी समय पांडवों को ढूंढते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम पांडवों से मिलने के लिए वहां आ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मैं कृष्ण हूँ। ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों को स्पर्श कर लिया। ऐसे ही बलराम का परिचय पाकर उन्होंने उनके चरण भी स्पर्श किए। सभी पांडव उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव नंदन, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ निवास करते हैं? आपने हम सभी को कैसे पहचाना? तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राजन, आप कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर कौन मनुष्य है जो इस अद्भुत कर्म को करने के लिए सक्षम था? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सभी लाक्षागृह की अग्नि से सुरक्षित निकल आए। आप सभी भाई हमेशा ऐसे ही अग्नि के समान आगे बढ़ते रहे। आप सभी को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम अभी वापस लौटकर अपने शिविर को जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम वापस अपने शिविर में लौट गए। जिस समय भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल कुमार दृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने चारों ओर सेवकों को बिठा दिया और कुम्हार के घर के पास ही छिप गए। शाम का समय होने पर भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने भिक्षा ला युधिष्ठिर को भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। तभी कुंती ने द्रौपदी से कहा, भोजन के पहले भाग को देवताओं को अर्पित कर दो और ब्राह्मणों को भिक्षा दे दो, तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो, फिर जो शेष बच जाए उसको शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो। अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के छह भाग करके चार भाइयों के लिए चार भाग अलग रख दो, उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग परोस दो। ये जो गजराज के समान शरीर वाले हष्ट पुष्ट युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है, इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी ने वैसा ही किया। देखते ही देखते रात हो गई। सभी पांडव दक्षिण की ओर सर करके नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, तलवारों और गदाओं के विषय में बात करने लगे। वहीं द्रौपदी उनके पैरों की ओर पृथ्वी पर ही लेटी हुई थी। दृष्टद्युम्न ने उनकी सारी बातें सुनी और कुमारी को सोते हुए देखा। यह सब सुनकर और देखकर उसने सारी बातें राजा द्रुपद को बता दी। दरअसल पांडवों का पता न लग पाने के कारण ही राजा द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को यह निश्चित करने के लिए भेजा था कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सही व्यक्ति के साथ किया है या नहीं। आखिर किस प्रकार महाराज द्रुपद जान पाएंगे कि उनकी पुत्री को स्वयंवर में पांडवों ने ही जीता है? अब ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले सीजन में। हमारे अगले सीजन में आपको पता चलेगा कि द्रौपदी का पांच पांडवों के साथ विवाह किस प्रकार हुआ।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।